मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज तारीख है 21 जुलाई 2016 और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अमित कुमार, आप बिहार शरीफ से हैं, सचेश यादव, आप अम्बेडकर नगर से हैं, और जय प्रकाश सिंह राणा, आप सतारगंज उत्तराखंड से हैं। तो अमित, सचेश और जय प्रकाश, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम लोग प्लेटो के गुरु सुकरात के बारे में बातें कर रहे थे और मैंने उनके दो अंश आपको पढ़कर सुनाए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सुकरात के जो अंश सुनाने जा रहा हूं उसमें दो बातें आपको सबसे प्रमुखता से जानने को मिलेंगी। पहला तो ये कि सुकरात के अंदर अपने विचारों को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपने सत्य के ज्ञान को लेकर के कितनी अधिक दृढ़ता थी। यहां मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं फ्रेंड्स, दृढ़ता, क्योंकि आगे मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। और दूसरी बात कि उन्होंने कई जगह अपने वक्तव्यों में अंतःकरण की बात कही है, अंतरात्मा की आवाज की बात कही है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में है भी, तो हम अब उनके दो वक्तव्य, सुकरात के दो ऐसे वक्तव्यों के बारे में जरा सुनेंगे और जानेंगे और फिर उनका विश्लेषण करेंगे जिनमें वे अंतःकरण की बात करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं, सबसे पहले उनके दो वक्तव्य सुनिए जो सुकरात के ही हैं और ये न्यायालय के सामने, या कह लीजिए कि आज की भाषा में कहें तो कटघरे में खड़े होकर वो केवल अपनी सफाई में बयान दे रहे हैं। अब देखिए कि सुकरात क्या कहते हैं। मैं आपसे कहता फिरता हूं कि धन से गुण की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि गुण ही धन है, और मनुष्य के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों का स्रोत है। यही मेरी शिक्षा है, और यदि मेरे यही सिद्धांत नवयुवकों को बिगाड़ते हैं तो मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं। परंतु यदि कोई कहे कि यह मेरी शिक्षा नहीं तो वह झूठ बोल रहा है। इसलिए हे एथेंस वासियों, मैं आपसे कह देता हूं कि चाहे आप अन्युतस के कहने पर चलें या न चलें, चाहे आप मुझे दोष मुक्त करें या न करें, आप भले कुछ भी करें, आप यह बात समझ लें कि मैं अपने तौर तरीकों से बाज नहीं आऊंगा, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े। ये उनका वक्तव्य है उनके अपने विश्वासों के प्रति दृढ़ता पर। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि मैं अपने तरीकों से बाज नहीं आऊंगा, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े। दोस्तों, अब आप देखिए कि ये जो इतनी ताकत जो अंदर से सुकरात में है, ये कहां से आती है। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत बहुत, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है फिल्मों में दोस्तों, कि मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने सुल्तान फिल्म तो देखी ही होगी। जितना रिकॉर्ड सुल्तान फिल्म बना रहा है, खासकर कलेक्शन को लेकर के, तो डेफिनेटली उनके कलेक्शन में थोड़ा सा योगदान तो आपका भी जरूर रहा होगा। मित्रों, मैं आपको सुल्तान की फिल्म के बारे में भी आगे चल करके बात करूंगा। देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर कोई जानता है, हर कोई कहता भी है लाइफ में के लिए कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और सुल्तान यही करता है। लेकिन सवाल यह है कि जो मेहनत का मादा है ये आता कहां से है। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर ये रिंग में जाएगा तो जीवित नहीं लौट सकता। हर कोई जान रहा है कि ऐसा ही होगा, और कहीं ना कहीं सुल्तान को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ही ना हो जाए, लेकिन वह रिंग में जाता है। तो मित्रों वो कौन सी चीज है जो इसके लिए प्रेरित करती है, आपको इन चीजों को समझना होगा थोड़ा सा। क्या कारण है, आप भी जानते हैं कि मेहनत की जानी चाहिए और आप करते भी हैं, तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरों को कुछ ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देती है या ज्यादा लंबे समय तक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देती है। उस पॉइंट पर हम, उस बिंदु पर, उस रहस्य पर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही बात करेंगे सुल्तान फिल्म को आधार बनाकर। उसका एक छोटा सा नमूना, कर्टेन रेजर आप कह लीजिए, यहां सुकरात के वक्तव्य में आपको दिखाई देगा। तो अब मैं उनका आज का दूसरा और अंतिम वक्तव्य पढ़ रहा हूं। दोस्तों, वही न्यायालय में खड़े हैं वो, और जो पूरी की पूरी जो जूरी बैठी हुई है उसके सामने वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप लोगों ने कई बार और भिन्न भिन्न स्थानों पर मुझे मिलने वाले एक संकेत अथवा देव संकेत के बारे में बोलते हुए सुना है। यह वही देवत्व है जिसकी मलेतस अपने अभियोग पत्र में हंसी उड़ाता है। आपको मालूम है कि मलेतस उन लोगों में से एक है जिसने अभियोग लगाया था। कल मैंने नाम आप लोगों को बताए थे कि तीन लोगों ने सुकरात पर अभियोग लगाए थे, जिसमें एक राजनीतिज्ञ अन्युतस थे, दूसरे कवि मलेतस थे और तीसरे प्रवचनकार लाइकोन थे। तो इसमें जो मलेतस का नाम लिया है कि कवि। यह संकेत मुझे कोई काम करने का आदेश तो नहीं देता, किंतु यदि मैं कोई गलत काम करने लगूं तो यह मुझे फौरन टोक देता है, किंतु यही मुझे राजनीतिज्ञ बनने से रोके भी रखता है। और मेरे विचारानुसार यह ठीक भी है, क्योंकि हे एथोनियों, मतलब एथेंस वासियों, मुझे विश्वास है कि यदि मैंने राजनीति को अपना व्यवसाय बनाया होता तो मैं कब का मर चुका होता, और मैं तब न तो आपका भला कर पाता और न अपना ही। मित्रों, यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो इन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीतिज्ञ बनने से अपने को नहीं रोक पाता, तो जो सुकरात थे उन्होंने राज्य पद पर काम किया था, वह सीनेट के सदस्य रहे थे। सीनेट के सदस्य का मतलब है, आज की भाषा में आप कह लीजिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो इसी तरह के काम में लग गए जो खासकर लोगों को उपदेश देने का, सिखाने का और बताने का काम करते हैं। आपकी इच्छानुसार बोलकर जीवित रहने की अपेक्षा, देखिए, आपकी इच्छानुसार बोलकर जीवित रहने की अपेक्षा मैं अपने ढंग से बोलकर मरना ही उचित समझता हूं। कठिनाई मृत्यु को टालने की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की है, क्योंकि उसका वेग मृत्यु से कहीं अधिक है। अब देखिए, मैं आपको एक विचित्र संयोग की बात सुनाऊंगा। आज तक वह दैवी गुण जिसका स्रोत मेरी आंतरिक देववाणी है, मुझे निरंतर नियमित रूप से मामूली बातों पर भी, अर्थात जब कभी मैं किसी बात पर जरा जरा सी भी गलती करने को होता हूं, वह मेरा विरोध करता आया था। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मुझ पर भयानक कठिनाई आ पड़ी है जिसको साधारणतः अंतिम और निष्कृष्टतम विपदा माना जाता है, परंतु उस देववाणी ने आज विरोध का तनिक भी संकेत नहीं दिया है। वो कहना ये चाह रहे हैं मित्रों कि मुझसे जब भी कहीं कोई चूक होनी होती थी तो मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे संभाल देती थी, मुझे संकेत कर देती कि नहीं, ऐसा मत करो। और आज जबकि मुझे मालूम है कि मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, मुझे वो संकेत नहीं दे रही है कि ऐसा कुछ मत करो, यानी कि वह मानकर चल रही है कि यही ठीक है, तुम्हारी मृत्यु ही श्रेयस्कर है। यहां आपने अंतःकरण और देववाणी की बात सुनी। अब यहां दो तीन चीजें देखिए मित्रों, सच में कभी कभी हमारी मृत्यु हमारे जीवन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। सरदार भगत सिंह ने भी यही कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं अब जी कर उतना कुछ नहीं कर पाऊंगा देश के लिए जितना मेरी मृत्यु करेगी, और वैसा ही हुआ। दोस्तों, अगर आपने पहले के ऑडियो सुने हों और आपको आपके ध्यान में हो, मैंने एक फिल्म का नाम आपको बताया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो रामानुजन पर बनी हुई फिल्म है, जो हमारे मैथमेटिशियन थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे मेरी जो कुल देवी हैं वो सपनों में, मेरे सपने में आती हैं और मुझे कुछ सूत्र बताती हैं। इसीलिए जब रामानुजन गए बाहर और उनके जो गुरु थे वो बार बार कहते थे कि तुम ये बताओ मुझे कि ये तुमने जो निष्कर्ष निकाला इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि उनकी जो पहुंच थी वो लॉजिकल थी। तो वो कहते थे कि नहीं, प्रोसेस मैं नहीं बता सकता। तो उनके जो प्रोफेसर थे वो ये तो मानते थे कि जो निष्कर्ष निकले हैं, जो कंक्लूजन है, वो सही है, लेकिन प्रोसेस कैसे, इसको तुमने निकाला कैसे? तो वो बिना प्रोसेस के उनके उस कंक्लूजन को, उस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। और वो उसके जवाब में कहते थे कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस सूझ गया, हो गया, समझ में आ गया, बस खत्म हो गई बात। तो मित्रों, ये जो अंतःकरण की आवाज है, जो अंतरात्मा की आवाज है, और जो महान लोग जिसका बार बार उल्लेख करते हैं, देखिए वो और कुछ भी नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो कोई अलौकिकता भी नहीं है, सच पूछे तो वो उस तरह की आध्यात्मिकता भी नहीं है। ये आपकी अपनी चेतना की ही आवाज है, आपकी अपनी ही चेतना की आवाज है। अब ये बात अलग है कि हम सब अपनी चेतना को इस तरह की आवाज देने के लायक कितना बना पाते हैं, ये मैं एक वैज्ञानिक इसका विश्लेषण कर रहा हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जा करके जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत, तो वो इसे एक अलौकिक शक्ति के द्वारा दिए गए संकेत बताएंगे। जैसे कि रामानुजन कह रहे थे कि ये मेरी कुलदेवी आती हैं स्वप्न में, तो ठीक है, उनकी अपनी ही चेतना कुलदेवी का रूप धारण करके आ रही होंगी और अपनी बात कह रही होंगी। लेकिन सवाल यह है कि केवल उन्हीं की तो कुलदेवी नहीं थी, हमारे भी कुलदेव, कुलदेवियां सबकी कोई ना कोई है ही, जो भारतीय परंपरा में है। तो हमारे लिए वो देवी देवता क्यों नहीं आते, क्यों नहीं खड़े होते, हमें क्यों नहीं संकेत देते? क्या वो हमारे शुभचिंतक नहीं है? क्या वो हमारे पिता नहीं है? हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी हमारे कान इस लायक हैं कि उनके संकेतों को सुन सकें? क्या हमारी समझ इस लायक है कि उनके संकेतों को डिकोड कर सके, उस भाषा को ग्रहण कर सके? या क्या हमारी चेतना उस ऊंचे स्तर तक पहुंची हुई है जहां, जिसके पर्दे पर इस तरह के बिंब उभर सके? तो सारा जो कमाल है मित्रों, वो चेतना का कमाल है। और वो चेतना आती कहां से है? देखिए, मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आई हुई हो, अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, तो एक व्यक्ति जो बाढ़ में बह रहा है वो देखता है कि एक खंभा बीच में दिखाई दे रहा है, वो बहते हुए बाढ़ के बीच में, और वो उस खंभे को पकड़ता है। तो अब वो खंभा उसे कितना बचाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो खंभा कितना मजबूत है, कितनी मजबूती के साथ उस जमीन पे गड़ा हुआ है। अगर वो खंभा अपने आप में कमजोर होगा तो ये खंभा भी जाएगा और ये व्यक्ति भी जाएगा, दोनों चले जाएंगे। तो जब हमारी अपनी आस्थाओं और अपने विचारों पर बहुत दृढ़ता आ जाती है, खंभे की तरह मजबूती आ जाती है मित्रों, तो वो खंभा हमें बचाता है, और वही देवत्व है और वही दैवीय संकेत है। वो फिर आपको गाइड करता है, वो दिशा बोध कराता है। ये हमारी अपने ही ऊपर की का आत्मविश्वास है, अपने ही विचार, अपने ही चरित्र, अपने ही भावनाओं की शुद्धता है जो उनको जन्म देती है और जिनके माध्यम से हमें संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो कि कुछ महीने पहले मैं सोमवार को ऑडियो फॉर एक्सलेंस प्रोवाइड किया करता था, और उसमें मैंने एनर्जी के चार लेवल्स की बात कही थी, और उसमें जो अंतिम लेवल एनर्जी की थी, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके अंतर्गत मैंने इसकी व्याख्या की है, जो आपके अंतःकरण की आवाज या देवत्व, जिसे अभी सुकरात ने कहा, वो कैसे आती है, उसके क्या मैकेनिज्म हैं, उसमें आपको सुनने को मिलेंगे। और आप लोगों में से जिन्होंने भी सुना हो, शायद वो अब सुकरात के इस वक्तव्य को बड़ी आसानी के साथ उसे जोड़कर देख लेंगे और समझ लेंगे। तो मित्रों, सुकरात के बारे में बस इतना ही। मुझे कल एक बहुत अच्छा मेल मिला था, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इस तरह के जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, अगर आप इनकी जीवनियों के बारे में भी कुछ बता सकें तो बेहतर होगा। और मुझे ये सुझाव बहुत पसंद आया, और सच पूछे तो मैं पहले सोच भी रहा था कि बीच बीच में मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने अपने सोच को दबा दिया, डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये जीवनियां बताने लगूंगा तो फिर मेरे पास हो सकता है कि कुछ ऐसे मेल आ जाएं कि सर ये जीवनियां तो परीक्षा में पूछी नहीं जाएंगी, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप कुछ फैक्ट्स बताइए, कुछ कंटेंट बताइए, कुछ और चीजें बताइए। तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि जब आप किसी की जीवनी जानते हैं, जीवनी को जानते हैं, तो सच पूछे उस समय के इतिहास को जानते हैं, हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को जान पाते हैं, और सच तो यही कि उसके बहुत से दार्शनिक विचारों को भी आप समझ लेते हैं सिर्फ जीवनियों के माध्यम से। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, अगर हम AIR न्यूज की बात करें तो पहले मैं, जैसे होता है ना कि हेडलाइंस, आज की हेडलाइंस, तो मेरी अपनी जो विश्लेषण की जो हेडलाइंस हैं मैं वो आपको पहले सुना दूं। पहला तो ये है कि जो एक जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष मायावती जी हैं उनके प्रति उन जो एक अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर के राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ, वो न्यूज थी। उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो खबर थी मित्रों, वो खासकर गुजरात में जो दलित आंदोलन की जो शुरुआत हुई है ये खबर थी, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा लेकिन उतने विस्तार के साथ नहीं। इसके बाद तीसरी खबर जो बहुत ही छोटी सी है और जिन पर मैं फिर से नहीं आऊंगा, वो अरुणाचल प्रदेश में जो खांडू जी हैं उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, दैट्स ऑल। और अंतिम जो खबर थी वो एक मोहम्मद साहिद नहीं रहे, जो हमारे 1980 की जो ओलंपिक हॉकी टीम थी जो गोल्ड मेडल जीत करके आई थी वो उसके मेंबर थे। तो मोहम्मद साहिद को मैं आप सबकी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम और अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें अपने चरण में, अपने शरण में स्थान दे और उनके जितने भी परिवारजन हैं, परिजन हैं, उन सबको यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो मित्रों, मैं आता हूं अब पहले इशू पर जो जिसको लेकर के आज राज्यसभा में हंगामा हुआ, संसद में हंगामा हुआ। देखिए मित्रों, ये तो एक घटना है, इस घटना से क्या तथ्य निकलते हैं जो हमारे सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है। मित्रों, मैं एक चीज जो बार बार आपको बीच में स्पष्ट भी करता चलता हूं वो ये कि मैं न्यूज की बात जरूर करता हूं, है ना, मैं लेकिन मैं जो न्यूज की बात करता हूं वो सिर्फ आपके सिविल सर्विस के संदर्भ में करता हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी न्यूज किस रूप में इंपॉर्टेंट है। मेरे जो महत्व का मूल्यांकन भी है वो सिर्फ सिविल सर्विस के अनुसार होता है और जो विश्लेषण भी होता है वो सिविल सर्विस के संदर्भ में होता है। उस विश्लेषण में मैं खुद भी नहीं होता हूं। अगर मुझे उस टॉपिक पर लिखना हो तो हो सकता है कि मैं कोई दूसरा स्टैंड लेकर लिखूं, मुझे नहीं मालूम, है ना। लेकिन यहां जो मेरी दृष्टि होती है वो पूरी तरीके से आपकी दृष्टि की होती है, आपकी दृष्टि होती है, और आपकी दृष्टि यानी कि सिविल सर्विस के लिए आपको कौन सी दृष्टि अपनानी चाहिए, है ना। इसलिए कुछ न्यूज अगर ऐसी छूट भी जाती है तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छोड़ दी है। मैं न्यूज बुलेटिन ये नहीं है, न्यूज बुलेटिन और अखबार पेपर पर बेस्ड सिविल सर्विस के लिहाज से ये तैयार किया गया एक लेक्चर सा है, कह लीजिए बस एड्रेस है, छोटा सा एड्रेस है, राइट। तो जो अभद्र जो टिप्पणी की गई है मित्रों, देखिए ये एक इवेंट है, घटना है और पूरे संसद में इसको लेकर के हंगामा हुआ है और सच पूछे तो पूरे देश में एक तरीके से सन्नाटा सा छा गया कि ऐसा कैसे, इस तरह की कैसे अभद्र टिप्पणी कर दी गई है, और हर कोई इस टिप्पणी की आलोचना ही करेगा, सवाल ही नहीं है। और आपने देखा कि जैसे ही ये टिप्पणी आई और कुछ समय के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपने उपाध्यक्ष को उस पद से भी हटा दिया और 6 वर्ष के लिए अपनी पार्टी से निलंबित भी कर दिया। मित्रों, तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट को अब हम सिविल सर्विस के लिहाज से देखते हैं। आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में अगर आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में जाएंगे तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल वर्ड उन्होंने यूज किया है, जो संवेदनशील वर्ग है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जब हम संवेदनशील वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? हमको मिलता है कि पहले तो आप जान लीजिए कि संवेदनशील वर्ग कौन से हैं। नो डाउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, उसमें महिला भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी आ जाते हैं, ये संवेदनशील वर्ग है। इसके बाद होता है कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ये समस्याएं क्यों हैं, उसके रीजंस क्या हैं। फिर फोर्थ आ जाता है कि सरकार इसके लिए क्या, फोर्थ आ जाता है कि संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ प्रोविजंस हैं, अगर हैं तो वो किस तरीके के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सरकार ने अभी तक इनके क्या क्या उपाय किए हैं। फिर आ जाता है कि उन उपायों के क्या परिणाम रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि वर्तमान सरकार ने क्या कोई इसके बारे में नए कदम उठाए हैं। इसके बाद लास्ट आ जाता है कि रिव्यू, जिसमें आप होते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या क्या होना चाहिए। तो ये आपके सिलेबस में दोस्तों एक छोटा सा ही वर्ड दिया हुआ है, लेकिन जब आप उसके बारे में तैयारी करेंगे तो देखिए इतने स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब आप सही मायने में अपने सिलेबस के साथ न्याय कर सकेंगे। तो जब आप इन सबको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब कम से कम आपका एक दृष्टिकोण बन जाएगा इस वर्ग के बारे में, आपके दिमाग में एक परिवेश कह लीजिए या पर्यावरण निर्मित हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब होगा क्या फ्रेंड्स, कि अभी मैंने जितनी भी चीजें जो जो जिस जिस तरीके से बताई हैं वो सीधे सीधे सिविल सर्विस में नहीं पूछी जाती हैं, ये आप अनसॉल्व पेपर जब देखेंगे तो पता आपको लग जाएगा, सीधे सीधे नहीं पूछी जाती है। लेकिन जो कुछ भी पूछा जाता है, जिस तरीके से भी पूछा जाता है, याद रखिए कि जब तक इन चीजों की जानकारी नहीं होगी आपको, जो मैंने अभी आपको बताई है, तब तक आप लिखने की स्थिति में नहीं आ सकेंगे। अगर लिखने की स्थिति में थोड़े बहुत अपने को पाएंगे भी तो उस मजबूत और संपूर्ण स्थिति में नहीं पाएंगे जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन कुछ मार्क्स आएंगे शायद सफिशियंट मार्क्स न आए। तो दोस्तों इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात तो यह कि पिछले 1.5-2 साल से जो घटनाएं इस संदर्भ में घट रही हैं, इस फील्ड में घट रही हैं, उसकी आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी जानकारी और पकड़ का मतलब ये नहीं कि आप इवेंट को याद कर करके रखें, उसका तो एक आभास सा होगा, चल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर जरूरत हुई तो आप उस इवेंट को एक लाइन में केवल कोट कर सकते हैं, इवेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यहां जो मैं पकड़ की बात कह रहा हूं वो आपको ये आपके ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि नहीं, ये इवेंट है तो इस इवेंट से रिलेटेड ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड है आपका अनसॉल्व पेपर। आप अनसॉल्व पेपर देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हर इवेंट पर एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर इकोनॉमिक सेक्टर में कोई घटना घट रही है तो आप देखेंगे कि इवेंट, उस इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, ज्योग्राफी से बिल्कुल अलग होगा, हिस्ट्री से बिल्कुल अलग होगा, पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल अलग होगा, सोशियोलॉजी से बिल्कुल अलग होगा। ये सेक्टर्स हैं, करंट दोनों के लिए जरूरी है, करंट अफेयर्स दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सबके में एक जैसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तब फिर जब आप इन दोनों को मैच करेंगे, करंट को फिर आप क्वेश्चन पूछने के ढंग से मैच करके, फिर जो इवेंट हुआ है उस इवेंट के संदर्भ में आप अपनी तरफ से फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे, और फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। ये एक तरीका होता है दोस्तों सिविल सर्विस की तैयारी का, और सबसे सिस्टमेटिक और मुझे लगता है कि एक सॉलिड तरीकों में से एक ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स करंट इवेंट यही है, जैसा कि न्यूज में आपने सुना कि एक अभद्र टिप्पणी की गई। अब हम देखते हैं कि ये जो अभद्र टिप्पणी की गई है, इस अभद्र टिप्पणी को अगर हम इस वल्नरेबल सेक्शन पर बना लें कि वल्नरेबल सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होते हैं, राइट? तो देखिए, अभी मैं आपको लेटेस्ट जो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर रहा है उससे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये है क्वेश्चन पेपर 1 से, मतलब जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में सोशल फील्ड नहीं है, फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल फील्ड भी नहीं है, लेकिन याद रखिए कि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री है फर्स्ट पेपर में। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक होगा, हिस्ट्री का जो प्रश्न होगा वो सैद्धांतिक होगा। जैसे समाजवाद या कम्युनिस्ट, साम्यवाद, ये आपके फिलॉसफी के भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके समाजशास्त्र के भी क्वेश्चंस हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए ये हिस्ट्री का भी चैप्टर है, हिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो या अब आप देखिए कि अगर हिस्ट्री से कोई चीज पूछी जाती है इस सेक्शन से, तो किस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान, जिसका इंग्लिश वर्ड है एसर्शन, के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। ये सामाजिक सुधार, जो हमारे इतिहास का एक चैप्टर है, सामाजिक सुधार आंदोलन जो आर्य समाज ब्रह्म समाज के रूप में हुए, वो वहां से उठाया गया है। तो ये हिस्ट्री से पूछा गया है। मैं एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं दोस्तों। इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। डिबेट द इश्यू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फॉर एजर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क्स टूवर्ड्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कंटेम्प्रेरी, अभी के दलित प्राख्यान की ये बात कर रहे हैं। तो बट नेचरले की जो समाज के सुधार आंदोलन होते हैं, कहीं ना कहीं इसका संबंध उससे है। अब देखिए, अभी भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं वनरेबल सेक्शन से ही जुड़ा हुआ मामला है। अब आप देखिए दोस्तों कि 2014 में सेकेंड पेपर में भी इस तरह का पूछा गया, सेकेंड पेपर। अब ये एक तरह से पॉलिटी का पेपर है, लेकिन इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका भी टॉपिक है ये। उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाएं शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं। इसका इंग्लिश में है दोस्तों कि डू गवर्नमेंट्स स्कीम फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज बाय प्रोटेक्टिंग रिक्वायर्ड सोशल रिसोर्सेज फॉर देम लीड टू देयर एक्सक्लूजन इन एस्टेब्लिशिंग बिजनेस इन अर्बन इकोनॉमीज। ये है मित्रों। अब आप देखें कि फिर हम इसी से रिलेटेड अब दूसरी चीज पर आते हैं, जो मैंने गुजरात में दलित आंदोलन की बात की। आप देख रहे हैं कि गुजरात में जो दलित वर्ग है फिर से मतलब एक तरीके से आंदोलन की स्थिति में है, और उसका कारण आपको मालूम होगा, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि वहां एक वर्ग है जो खासकर एक जो जानवर होते हैं उनकी खाल निकालता है और फिर उनको खाल बेचता है, और सच पूछे तो जानवरों की जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो भी बेची जाती हैं। गुजरात का एक स्पेशली एक समुदाय है जो ये काम करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही एक और बात है, गोरक्षण समितियां भी हैं जो गायों की रक्षा के लिए काम करती हैं। नो डाउट इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट विधान भी बना सकती है, कानून भी बना सकती है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है। सच पूछे तो स्टेट का भी की भी विषय सूची में शामिल नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जरूर इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट क्योंकि आपका जो नजरिया होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए, तो आपको ये फैक्ट मालूम होना चाहिए। अगर आप जैसे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मालूम हो कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विश्लेषण, मतलब वो तत्व दिए गए हैं कौन कौन से हैं। आपको यह भी मालूम होगा दोस्तों कि आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड का संविधान हमारा संविधान लागू होने से करीब 10-12 साल पहले ही लागू हुआ था, 1937 में शायद लागू हुआ था। अब आप देखें कि उसमें अनुच्छेद 48 ये स्पेशली ध्यान होना चाहिए कि अब भले ही आप दूसरे अनुच्छेदों को भूल जाएं, लेकिन अनुच्छेद 48 अभी की परीक्षा के हिसाब से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अनुच्छेदों को याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया है, केवल ये लिखा गया है कि मतलब राज्य का ये दायित्व होगा, कर्तव्य होगा कि गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। ये केवल एक नीति निर्देशक तत्व है। अब इस नीति निर्देशक तत्वों को आधार बना करके डेफिनेटली अगर कोई भी वर्ग चाहे तो, कोई भी राज्य चाहे तो वो कानून बना सकता है। कुछ राज्यों ने कानून बनाए हैं जिसमें गौ संरक्षण की बात है और उसको लेकर के गाय संरक्षण की समितियां भी चल रही हैं। अब मित्रों यहां जो मामला है वो ये है कि गौ रक्षण तो एक बात हो गई, लेकिन जो जानवरों की खाल उतारी जा रही है या जो गाय जो मर चुकी हैं उनकी जो खाल उतारी जा रही है उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसी को रोकने की कोशिश की गई थी और फिर वो मारपीट हुई, जो कुछ भी हुआ, फिर तो दंगे इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहां होता यह है दोस्तों, एक गाय की रक्षा का सवाल है और दूसरा है कि जब गाय मृत हो गई है तो उसके जो चमड़े हैं, हड्डियां हैं, उनका क्या किया जाए। ये एक भावनात्मक प्रश्न हो सकता है, एक थोड़ा बहुत धार्मिक प्रश्न भी लोग इसको बना सकते हैं, दूसरा एक जीविका आजीविका का भी प्रश्न हो सकता है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में जो खासकर लेदर इंडस्ट्री है वो 80,000 करोड़ रुपए का है और भारत दूसरा विश्व का सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर कंट्री है, 80,000 करोड़ रुपए का है और इससे लगभग 60 लाख लोगों को तो हम 2020 तक देने की बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम रोजगार देंगे, तो काफी उसमें से 60 लाख लोगों में से बहुत लोग इसमें भी रोजगार से जुड़े हुए हैं और ऐसा वर्ग है कि अगर उनको इससे बंद कर दिया गया तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। और फिर मेक इन इंडिया की भी हम बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र बिल्कुल एक जगह है, आजीविका और मेक इन इंडिया और रोजगार उपलब्ध कराना और टर्नओवर इंडस्ट्री, ये अर्थशास्त्र एक तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का नीति निर्देशक तत्व दूसरी तरफ है, भावना तीसरी तरफ है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें किस तरह से आपको यहां एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो बस थोड़ी सी मैं इसी की चर्चा करना चाह रहा था और आपको मैं आज दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल कमेंट इस पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों इस इशू को पर आपको ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो आप देख रहे हैं कि गुजरात में ये घटना घट गई है, इधर इन्होंने उस वर्ग पर टिप्पणी एक कर दी है, तो इस तरह की घटनाओं को फिर जोड़ करके सिविल सर्विस में कोई एक प्रश्न तैयार कर लिया जाता है। तो मित्रों आज के न्यूज के बारे में इतना ही और साथ ही न्यूज़पेपर के बारे में भी इतना ही। मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर और सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम मैं ले रहा हूं। सुरेंद्र सिंह प्राची दिल्ली से, दीपक कुमार पटना से, नवल चंबा हिमाचल प्रदेश से, पुष्पेंदु प्रभात न्यू दिल्ली से, रत्नेश सिंह कानपुर से, डॉक्टर हरि कृष्ण आर्य अल्मोड़ा उत्तराखंड से, ब्रिजेश मिश्रा नासिक महाराष्ट्र से, विनय मौर्य बलिया उत्तर प्रदेश से, पंकज मिश्रा, रितेश साहू बैतूल मध्य प्रदेश से, सौरभ गोयल दिल्ली से, रजनीश मुजफ्फरपुर बिहार से, रूप माला सूर्यवंशी बैतूल मध्य प्रदेश से, धनंजय त्रिपाठी, प्रशांत मवानी राजकोट ऑब्लिक लंदन से, रानी कुंभकार भोपाल से, गौरव शर्मा सूरज कुमार न्यू दिल्ली से, संगीता चौधरी और मृदुल त्रिपाठी बहराइच उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो गाइडेंस समाप्त होता है। आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।